गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्विजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने डिस्कस कर लिया था पुरंजन, और पुरंजन का विवाह हो गया था और विवाह के पहले के वार्तालाप चल रहा था, शायद थोड़ा बहुत वार्तालाप बाकी था। पुरंजन ने बोल दिया था पर जो स्त्री थी, स्त्री का इसकी तरफ से जवाब आना बाकी था। तो वो स्त्री आंसर देना चालू करती है कि कैसे मैं आपके सिवा, स्त्री जो है वो पुरंजन को आंसर दे रही है कि कैसे मैं आपके सिवा किसी और को ग्रहण कर सकती हूँ, स्पेशली जो हाउस होल्डर लाइफ में है और भौतिक संसार को भोगने के रास्ते में है। प्रवृत्ति मार्ग होता है और निवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि जो इस संसार में अटैचमेंट डेवलप करना चाहते हैं, और निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो इस संसार से डिटैच होना चाहते हैं। तो जो प्रवृत्ति मार्ग में है और ऐसे लोग जो हैं वो, और जिनको प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए मनुष्य का शरीर मिलता है, तो वो आपके जैसे पति को प्राप्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी वस्तुओं को स्वीकार करेंगे। और ये स्त्री इस तरह से बोलती है कि हाउस होल्डर जीवन इतना अच्छा है कि वो हाउस होल्डर जीवन में भौतिक संसार का भोग भी, सुख भी भोगते हैं और बाद में मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, परंतु जो ब्रह्मचारी होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं और सन्यासी होते हैं, वो तो बहुत गरीब होते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं कि भौतिक भोग में क्या सुख होता है और किस प्रकार से भौतिक भोग इतना अच्छा है, इस तरह से वो स्त्री बता रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत अलग है। ये बता रहे हैं कि संसार में मैथुन सुख जो है, सेक्स का जो सुख है, वो सुख इतना ऊंचा है कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तो सन्यासी ये लोग तो गरीब हैं, इनको पता ही नहीं उसके बारे में। और जो गृहस्थ है वो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट माने जाते हैं क्योंकि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सबका सबका भोग करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि वास्तविकता में जब कोई व्यक्ति भौतिक भोग में डूबा रहता है तो उसके लिए भौतिक भोग बहुत अच्छा लगता है। जिसको मैथुन सुख का पता है उसको ऐसा लगता है कि इससे ऊपर कुछ सुख है ही नहीं, जबकि भौतिक संसार का कोई भी सुख है वो एक ही कैटेगरी में आता है, उसका नाम होता है जड़ आनंद। जड़ आनंद मतलब भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला आनंद। जड़ आनंद के ऊपर होता है ब्रह्मानंद जो निराकार ब्रह्म की अनुभूति करके हमें प्राप्त होता है। तो ब्रह्मानंद के ऊपर आता है प्रेमानंद जो कि कृष्ण की भक्ति करके प्राप्त होता है। तो सामान्यतः जो भौतिक सुख वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये भौतिक सुख मैथुन सुख से ऊपर कुछ है ही नहीं। ये चीज प्रैक्टिकली हमने देखी भी है। बहुत सारे मटेरियलिस्टिक लोग हैं जो इस प्रकार से बात करते हैं कि इस्कॉन के भक्त तो चाय भी नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उनके जीवन में सुख कहाँ है। इस प्रकार से अमेरिका में एक बार केस हुआ था। एक बार एक भक्त को कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे, समाज के ऐसे लोग थे जो भक्तों से परेशान थे, मतलब उनको थोड़ा लगता था कि ये लोग इस तरह से क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पुलिस से कंप्लेन की कि ये भक्त बहुत परेशान करते हैं और इस तरह से, और पुलिस को कुछ पैसा खिला के उस भक्त को जेल में डलवा दिया। तो वो भक्त जेल में गया, सुबह 4 बजे से उठ के वो उसने मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती जेल के अंदर ही चालू कर दिया, कीर्तन किया, फिर माला की 2-2.5 घंटे बैठ के, उसके बाद भागवतम पढ़ा, गुरु पूजा किया। तो जो जेल का व्यक्ति था वो सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक देख रहा था, और 10 बजे वो आके पूछता है कि तुम 6 घंटे हो गए, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बताया ये तो हमारा रेगुलर शेड्यूल है, हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और फिर ये सब करते हैं। और उसने बोला फिर सोते कब हो? तो उसने बोला रात में 9 बजे सोते हैं। और जब पूरा शेड्यूल उसने सुना भक्त का, तो उसने जेल से बाहर निकाल दिया उसको। उसने बोला तुम तो ऑलरेडी दुख भोग रहे हो, इतने सुबह उठ जाते हो और तुम इतने परेशान रहते हो, 6 6 घंटे ये सब काम करते रहते हो, तुम तो ऑलरेडी दुखी हो, तुम्हें मैं जेल में डाल के क्या करूंगा। तो सामान्यतः भौतिक लोग सोचते हैं कि जो भौतिक भोग नहीं कर रहा है वो व्यक्ति हमेशा दुखी है। इसी तरह से इस श्लोक में लिखा हुआ है कि उनको लगता है कि संन्यास आश्रम में जो है वो भी इस दुख से वंचित है, वो तो गरीब लोग हैं, पुअर पुअर संन्यासी लिखा है। ऐसे संन्यासी जिन्होंने भौतिक भोग को भोगा नहीं वो तो गरीब है, उनको पता ही नहीं क्या। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं, इन लोगों को पता नहीं रहता कि आध्यात्मिक आनंद क्या कहलाता है। इस प्रकार से उस स्त्री ने पुरंजन से बोला। और तो उपाजी आगे लिख रहे हैं कि एक्चुअली वो स्त्री फिर आगे बोलती है कि गृहस्थ जीवन इतना महान है कि इसमें हमें भौतिक भोग भी मिलता है, व्यक्ति खुद भी खुशी होता है, अपने पितरों को भी संतुष्ट कर सकता है, देवताओं को भी संतुष्ट कर सकता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो भौतिक भोग कर रहा हो सकता है वो ये सब संतुष्ट करता हो, परंतु इन सबको संतुष्ट करने के चक्कर में वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना भूल जाता है, जो उसकी वास्तविक ड्यूटी है वो भूल जाता है, बाकी सबको संतुष्ट करता रहता है। इसके बाद वो स्त्री बोलती है कि आपके जैसा पति कौन स्वीकार नहीं करेगा, जो कि इतना प्रसिद्ध है, इतने महान है और इतने हैंडसम है और इतनी आसानी से मुझे मिले हैं, तो कौन आपसे आकर्षित नहीं होगा। तो अभी हम कल हमने डिस्कस किया था कि पुरंजन जो है वो जीव है और ये स्त्री जो है वो जीव की बुद्धि है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे कि वो इजीली हमें समझ में आ सके। तो इतना सुनने के बाद राजा पुरंजन वो स्त्री दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उस सिटी के अंदर गए। सिटी के अंदर मतलब मनुष्य शरीर के अंदर, जो भोगवती नाम से सिटी थी, 9 द्वारों की सिटी, उसके अंदर जाते हैं। मतलब आत्मा और बुद्धि, आत्मा बुद्धि के द्वारा संसार का भोग करना चाहते हैं और बुद्धि आत्मा को सपोर्ट करती है, इसलिए बुद्धि को पत्नी जैसा माना है, आत्मा को पति जैसा माना है। और ये दोनों मिलके फिर शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, राजा पुरंजन उनकी वाइफ, उनकी पत्नी सटी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और 100 साल तक उस सिटी में राज्य करते हैं। मनुष्य शरीर का देह 100 साल का होता है, 100 साल तक पुरंजन उनकी पत्नी उसमें राज्य करते हैं। बहुत सारे सिंगर्स आते थे राजा के ग्लोरीज को बताने के लिए, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती थी तो राजा लेक में जाते थे और कई स्त्रियों के साथ एंजॉय करते थे। और उस सिटी में, और डिटेल में दिया है कि उस सिटी के पूर्व द्वार में एक खड्योत और अविर्मुख, ये दो दो द्वारों के नाम थे। उन द्वारों से राजा बाहर जाते थे बिभ्राजित, और उनके किस मित्र के साथ जाते थे? द्युमान के साथ जाते थे। ये एक्चुअली बहुत टेक्निकल है, मैं जस्ट धीरे धीरे समझाता हूँ। उस सिटी में उत्तर दिशा में 2 गेट थे, एक गेट का नाम था खद्योता और दूसरे गेट का नाम था आविर्मुखी। खद्योता का मतलब होता है जुगनू और आविर्मुखी का मतलब होता है टॉर्च लाइट, टॉर्च की लाइट या लैंप की लाइट, और खद्योता का मतलब होता है जुगनू। तो ये 2 गेटों के नाम हैं, और राजा इन 2 गेटों से अपने मित्र द्युमान, द्युमान होता है सूर्य का नाम होता है, सूर्य को द्युमान बोलते हैं, तो अपने मित्र द्युमान के साथ वो बिभ्राजित सिटी में जाते थे। बिभ्राजित का मतलब होता है कि क्लियरली देखना, दैट मीन्स राजा इन 2 राज्यों से, मनुष्य जब प्रकाश के रास्ते से जाता है तो उसको वास्तविक वस्तु में दिखाई देती है। सूर्य के साथ जा रहे हैं मतलब वो प्रकाश के रास्ते से जाते थे तो संसार का वास्तविक नेचर देख पाते थे। तो अगर संसार का वास्तविक नेचर मतलब भौतिक संसार किस प्रकार से डिजाइन है, तो कभी कभी राजा के अंदर भी ज्ञान की अवस्था आती थी। इसी तरह से जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं तो कई बार हमें भी कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ समय के लिए वो ज्ञान रहता भी है फिर गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार जब हम उसमें जाते हैं, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम शमशान घाट में जाते हैं उसके साथ, तो शमशान में हमें बहुत वैराग्य आ जाता है। जैसे ही उस शरीर में आग लगाई जाती है तो कुछ देर के लिए हम बहुत सोचते हैं कि देखो सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ मिटने वाला है, और अभी हमें तैयारी करनी चाहिए मृत्यु की। और शमशान में वो आग लग के खत्म होती है, हम शमशान के गेट से बाहर आते हैं, फिर से पुराना काम चालू कर देते हैं। इसको बोला जाता है शमशान वैराग्य। तो कई बार व्यक्ति जब अपने सामने के किसी ज्ञान की वस्तु को देखता है तो उसको हृदय में ज्ञान आता है। तो वो इसमें डिस्कस किया गया है कि पूर्व दिशा के देश गेट से जब राजा जाता था अपने मित्र के साथ, तो उसको कभी कभी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और वहां पे पूर्व दिशा में दो और गेट थे, उनका नाम था नलिनी और नालिनी। और इन इन दो गेटों से राजा जाते थे सौरभ राज्य में, और उनका मित्र होता था अवधूत। इसका क्या मतलब है? नलिनी और नालिनी, एक्चुअली ये जो गेट बताए जा रहे हैं, गेट का मतलब आउटलेट। किन किन इंद्रियों से हम बाहर की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, बाहर की वस्तुओं को भोग करते हैं, उन उन इंद्रियों का नाम बताया जा रहा है। तो ये दो दो जो गेट हैं, नलिनी और नालिनी, ये हमारी दो नाके हैं। एक नाक से जो सांस लेते हैं, दूसरी नाक से सांस छोड़ते हैं। तो इन दो नाकों से राजा जाता था एक सिटी में, उस सिटी का नाम था सौरभा। सौरभा का मतलब सुगंध। इन दो नाकों से कोई भी वस्तु की सुगंध ली जा सकती है। और वहां पे उनका मित्र कौन होता था? अवधूत। अवधूत मतलब हवा, हवा को, हवा का एक नाम अवधूत है। तो हवा की मदद से इन दो गेट से राजा उस सुगंध नामक जगह पे जाता था। मीनिंग हवा की मदद से हम अच्छी वस्तुओं को स्मेल करते हैं अपने दो नाकों के द्वारा। ये भी नाक भी एक भोज मतलब भोग का स्थान है। इसके अलावा एक और गेट था, पांचवा गेट उत्तर दिशा में, उसका नाम था मुखिया। मुखिया मतलब मुख, चीफ गेट। तो ये मुखिया गेट से राजा जाता था दो स्थान में, उन स्थानों का नाम है बहुदान और आपन। दो स्थान है, बहुदान का मतलब होता है भोजन करना और आपन का मतलब होता है बोलना। तो मुख नामक गेट से राजा ऐसे सिटी में जाता था, दो सिटी में जाता था, बहुदान और आपन, मतलब मुख से खाया भी जाता है, बोला भी जाता है। और उनका फ्रेंड कौन रहता था? फ्रेंड रहता था रसज्ञ। रसज्ञ मतलब जीभ, जीभ का एक नाम रसज्ञ होता है, जो कि हमें टेस्ट प्रदान करती है, उसको रसज्ञ बोला जाता है। इसके बाद दक्षिण, उसके बाद आता है दक्षिण गेट में, दक्षिण गेट का नाम था पितृहू। पितृहू का मतलब होता है दाहिना कान, दाहिना ये जो होता है वो पितृभू होता है, और ये दाहिना काम कर्म कांडीय कार्यों के लिए यूज होता है। तो इस गेट से राजा विजिट करते थे दक्षिण पांचाल देशों में, जैसे पितृलोकों में। पितृलोक मतलब जहां पे कर्म कांड के द्वारा जाया जाता है। और उनका मित्र कौन होता था? शुतधरा। कान से जब हम कर्म कांड के शास्त्रों को सुनते हैं तो हम पितृलोक की तरफ जाते हैं। और इसी तरह से उत्तर दिशा में देवहू नाम से एक गेट था, जो कि हमारा लेफ्ट ईयर है, लेफ्ट साइड का जो कान है वो देवहू कहलाता है। और ये कान आध्यात्मिक दीक्षा लेने के लिए उपयोग किया जाता है, आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए। राइट कान जो है वो कर्म कांड को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, लेफ्ट कान जो है वो भक्ति आध्यात्मिक कार्यों को सुनने के लिए किया जाता है। तो इस गेट से राजा जाता था निवृत्ति मार्ग, मतलब उत्तर पांचाल। उत्तर पांचाल मतलब वैकुंठ में और निवृत्ति मार्ग में। और इसके बाद पश्चिम दिशा में एक गेट होता है, उसका नाम होता है आसुरी। आसुरी का मतलब जननी इंद्रियां, जो कि मनुष्य की दो मनुष्य की जो जननी इंद्रियां होती हैं, उस गेट से राजा जाता था ग्रामक। ग्रामक मतलब जहां पे मैथुन क्रिया बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है, उसको ग्रामक बोला जाता है। और उस समय उसका मित्र कौन होता था? दुर्मदा। दुर्मदा मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि गलत कार्य करता है। दुर् का मतलब होता है सिंफुल, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन मतलब जो कि कोई जिसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है। इसी तरह से दुर्मदा मतलब पापी और पागल। जो व्यक्ति भोग में लगता है उसका मतलब है कि वो पापी है, वो पागल है, क्योंकि उसका मित्र दुर्मद हो जाता है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम ये क्रियाएं करते हैं तो ये जो मित्र है ये हमारा साथ रहता है। तो हर पाप की क्रिया में, हर पुण्य की क्रिया में कोई मित्र हमारा साथ होता है। तो इस तरह से फिर इसके बाद एक और गेट था, उस गेट का नाम था निर्वृति। निर्वृति मतलब एनस, और एनस मतलब जहां से व्यक्ति स्टूल पास करता है वहां से राजा जाता था वैशसा। वैशसा मतलब नरक लोक में जाता था। और उसका मित्र होता था लुब्धक। इसका मतलब है, लुब्धक का मतलब होता है ग्रीड, लोभ। जो व्यक्ति बहुत लोभी होता है वो जब अपना शरीर त्याग करता है तो उसकी आत्मा उसके गुदा द्वार से निकलती है, जहां से स्टूल पास करते हैं वहां से निकलती है। इसलिए आप, हमने देखा होगा, आप लोगों ने कभी कभी अनुभव किया होगा कि कई बार जब व्यक्ति मरता है तो यूरिन और लेट्रिन पास कर देता है, दैट मीन्स उसकी आत्मा वहां से निकली है। तो जो पापी लोग होते हैं उनकी आत्मा गुदा द्वार से निकलती है, और अगर गुदा द्वार से आत्मा निकली है उसका मतलब वो व्यक्ति नरक जाने वाला है। और वो लोभी होता है, कामी होता है, ऐसे लोग जो गुदा द्वार से उनकी आत्मा निकलती है फिर वो नरक की तरफ जाते हैं। इस प्रकार से 9 गेट जो है सिटी के, उन 9 गेट का डिस्क्रिप्शन है, 9 के 9 गेटों का डिस्क्रिप्शन है कि और कैसे वो हमारे जीवन में काउंट होते हैं। नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लासेस होगी ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ इस प्रकार से कुछ बनाऊंगा जिसमें कि और ज्यादा क्लियर हो सके जाए। ये सारे जो हमने डिस्कस किए उसको केवल मैं नोट्स के फॉर्म में कहीं पे लिख के फिर उसको डिस्प्ले करूंगा, वो नोट्स में आप लोगों को भेज भी सकता हूँ इस ग्रुप में। तो उससे ये फायदा होगा कि ये पूरा का पूरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास एक नोट्स के रूप में आ जाएगा, जब भी आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो नोट्स बनाना चालू किया, ऑलमोस्ट 50% बन गया है। जितना भी बाकी है नेक्स्ट वीक हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो वो नोट्स में शेयर करूंगा, उससे आपको समझने में बहुत आसान होगा। इस तरह से राजा के 9 गेट में जब वो जाता था वो डिस्कस हो गया। राजा ऐसे दो अंधे लोगों से भी एसोसिएट करता था, उन अंधे लोगों का नाम था निर्वाक और पेशकृत। पेशकृत, निर्वाक का मतलब होता है भुजाएं, पेशकृत का मतलब होता है पैर। तो ये दोनों के दोनों अंधे होते हैं क्योंकि हाथ और पैर देख नहीं सकते, जो आंखें आंखें उनको दिखाती हैं वही वो कार्य करते हैं। और इन दो अंधे लोगों के संगति में राजा जाता था अलग अलग क्रियाकलापों करने के लिए। कई बार वो कुछ प्राइवेट हाउस में जाता था अपने पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए मोह के कारण, और कई बार वो वास्तविकता में खुशी भी होता था। सामान्यतः जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो खुशी भी फील करता है। इस प्रकार से राजा जब फंसा रहा फ्यूटिव एक्टिविटी में, कर्मकांड में, पुरंजन पूरी तरह से भौतिक बुद्धि के नियंत्रण में आ गया। दैट मीन्स भौतिक बुद्धि के नियंत्रण में आ गया मतलब वो अपनी पत्नी के नियंत्रण में आ गया। सामान्यतः इस प्रकार से ही होता है कि व्यक्ति अगर भोग में बहुत डूबा रहे तो उसको चूंकि अपनी पत्नी से इंद्रिय भोग प्राप्त होता है, अच्छा भोजन प्राप्त होता है, इसलिए व्यक्ति पत्नी से अटैच हो जाता है, पत्नी पत्नी उसको डोमिनेट करने लगती है। सामान्यतः इस प्रकार से होता है, जो भौतिक भोग में लोग डूबे रहते हैं वो केवल उसको केवल क्योंकि पत्नी से उसको भोग की वस्तु प्राप्त होती है और भोजन प्राप्त होता है, इसलिए व्यक्ति उससे अटैच हो जाते हैं, उसके चक्कर में वो आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से राजा पुरंजन भी अपनी बुद्धि से अटैच हो गए, और इस इतना ज्यादा अटैच थे कि जब उनकी पत्नी मतलब रानी जब कुछ पीती थी तो पुरंजन भी पीते थे, जब रानी भोजन करती थी तो राजा भी पीछे जा जाके पीछे से भोजन करते थे, जब रानी गाती थी तो राजा भी गाता था, जब रानी रोती थी तो राजा भी रोते थे। दैट मीन्स आत्मा अपनी बुद्धि के पीछे पीछे भागती है, जैसा जैसा बुद्धि हमें बोलती है करने के लिए वैसा वैसा हम करते हैं। इससे ये सिग्निफाई होता है कि राजा उस क्वीन की बात हमेशा मानते थे, और क्वीन जहां जो भी करते थे वो करते थे। जब रानी हंसती थी तो पुरंजन भी हंसते थे, जब रानी चलती थी तो पुरंजन भी पीछे से चलते थे, और जब रानी को सुनती थी तो राजा भी वो सुनते थे, और जब रानी को प्रसन्नता होती थी राजा भी प्रसन्न होते थे, जब रानी को दुख होता था तो राजा भी दुखी होते थे। इसी तरह से जीव अपनी बुद्धि को हमेशा फॉलो करता है जैसे राजा अपनी रानी को फॉलो करते थे। एक बार क्या हुआ, राजा पुरंजन शिकार के लिए जाते हैं, अपना धनुष बाण लेते हैं, और धनुष में बहुत सारे तीर होते हैं। ये तीर कैसे कैसे, इन तीरों के नाम क्या है, अटैचमेंट और एवर्जन, जो चीज उनको अच्छी लगती है जो चीज अच्छी नहीं लगती है। ये दो प्रकार के तीर और दो प्रकार के धनुष, धनुष जहां पे तीर रखे जाते हैं वो लेके जाते हैं, और इस प्रकार से अपना गोल्डन कवच अपने ऊपर लगाते हैं। गोल्डन कवच का मतलब होता है घमंड। जब भी हम संसार में भोग करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर घमंड होता है, तो राजा ने जो गोल्डन सोने का कवच अपने शरीर पे लगाया था शिकार करते समय, वो उनके घमंड को डिनोट करता है। और राजा बैठता है रथ के ऊपर और 11 कमांडर उसके साथ जाता है। 11 कमांडर कौन कौन है, 11 मिलिट्री कमांडर, 10 इंद्रियां और 1 मन। 11 कमांडर के साथ राजा शिकार के लिए जाता है, और शिकार कहाँ पे करने जाता है, उस जंगल का नाम होता है पंचप्रस्थ। पंचप्रस्थ मतलब पांच इंद्रिय भोग का स्थान, जहां से पांचों इंद्रियों को इंद्रिय भोग प्राप्त होता है, वहां पे राजा जाते हैं। तो जंगल जाने का मतलब है कि कैसे कोई व्यक्ति भोग में लग के पाप के जीवन में प्रवृत्त होता है, वो जंगल जाने को डिनोट करता है। और पुरंजन का रथ पांच घोड़ों के द्वारा हाँका जा रहा था। पांच घोड़े जो है वो ज्ञान इंद्रिया कहलाती हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दो पहिए थे, दो पहिए मतलब एक पहिया डिनोट करता है धार्मिक जीवन को, और दूसरा पहिया डिनोट करता है पापमय जीवन को। और उस रथ के ऊपर तीन फ्लैग होते हैं। तीन फ्लैग का मतलब तीन गुण, नेचर के तीन गुण होते हैं। रथ की एक रस्सी होती है, रस्सी का मतलब मन, और रथ के एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर मतलब परमात्मा या बुद्धि, दोनों ड्राइवर हो सकते हैं। और एक स्थान होता है सिटिंग प्लेस, वो सिटिंग प्लेस होता है हृदय, व्यक्ति का हृदय जहां पे आत्मा निवास करते हैं। और उसके बाद होता है दो पोल, जहां से वो घोड़ा, जहां से पहिया बंधा रहता है। ये दो पोल डिनोट करते हैं शोक और मोह को। और उस रथ में सात कवरिंग होती है, जैसे शरीर में सात कवरिंग होती है, सबसे ऊपर स्किन, फिर मसल आता है, फिर फैट आता है, ब्लड आता है, मैरो, बोन और सीमन, ये सात कवरिंग होती है। उसी प्रकार से उस रथ की सात कवरिंग है। और राजा दो दो एरो चलाता था अपने रथ पे बैठ के। दो एरो डिनोट करते हैं मिथ्या अहंकार को, और जो पांच अलग अलग स्टाइल में जाते थे, पांच कर्मेंद्रियों की स्टाइल में जाते थे, उनके चारों तरफ पांच ऑब्स्टेकल्स होते थे, पांच हवाएं उसको डिनोट करते हैं। एक्चुअली इतना टेक्निकल है कि अगर हम याद करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अगर जब तक हम कुछ नोट्स बना के उसको ठीक से डिस्प्ले करके नहीं करें, तब तक पूरा समझ नहीं सकते। इसलिए मैं सोचा था कि इसको नोट्स बनाए, तो नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो इसको हम नोट्स से आपको समझाएंगे, और नोट्स से फिर आपको शेयर कर सकते हैं, तो उससे आसान रहेगा समझना। तो इस प्रकार से आगे फिर आता है कि राजा पुरंजन को बहुत मुश्किल था अपनी रानी का एसोसिएशन छोड़ना, और हमेशा वो रानी के साथ रहता था, भोग में डूबा रहता था। और जब राजा शिकार करने के बाद घर पे लौटता है, तो स्नान करता है पुरंजन, भोजन करता है, फिर रेस्ट करता है। दैट मीन्स आप पापमय जीवन खत्म करने के बाद कोई व्यक्ति फिर आके यज्ञ करता है, अपने आप को शुद्ध बनाता है। उसके बाद राजा बहुत अच्छे से ड्रेस करता था, और अपने चंदन लगाता था, माला पहनता था, उसका मतलब वो ज्ञान, धर्म के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता था। और उसके बाद फिर राजा अपनी अपनी क्वीन के पास जाता था। तो यहाँ पे क्वीन का डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो कृष्ण चेतना थी उसको प्राप्त करने का प्रयास करता था। और राजा जब अंदर गए तो राजा ने क्वीन को देखा नहीं कहीं, क्वीन एब्सेंट थी। तो राजा ने क्वीन की जो सहेलियां थी उनसे पूछा कि आपकी रानी कहाँ है। और रानी, उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी जो है वो तो जमीन में डली हुई है, कोप भवन में डली हुई है। तो हम समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा हुआ है। तो जब राजा पुरंजन ने देखा कि उनकी पत्नी ग्राउंड पे डली हुई है, वो बहुत दुखी हुए। इसका मीनिंग है कि राजा जब पाप कर्म करने के लिए गए थे जंगल में, हमने देखा था कि जंगल में जब शिकार करने गए थे, शिकार का मतलब पाप करने के लिए गए थे। तो जब शिकार करने के लिए गए तो पत्नी को साथ में नहीं ले गए थे। दैट मीन्स जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करने जाता है तो अपनी बुद्धि को इग्नोर कर देता है, पाप करते समय वो बुद्धि को इग्नोर कर देता है, क्योंकि पत्नी जो है बुद्धि का प्रतीक है। और राजा जब शिकार कर्म करने के लिए गए थे पत्नी को छोड़ दिया था, इसलिए पत्नी जो है वो नेग्लेक्टेड अवस्था में डली हुई है। तो राजा को ये दुख होता है कि उसने अपनी बुद्धि की नहीं बात नहीं सुनी और पाप के कर्मों में लगाया। और फिर अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास करते हैं, और फाइनली जब पत्नी मान जाती है, मनाने का प्रयास बोला जाता है पश्चाताप को। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उस पाप कर्म को हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए, जिससे कि उसका फल हमारा खत्म हो जाए। जब हम अपने पुराने पाप के जीवन को रिग्रेट करते हैं, उसके बाद हम कृष्ण भक्ति के प्लेटफॉर्म पे ऊपर उठ सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे राजा लगातार इल्यूजन में फंसे थे, और हमेशा राजा इस प्रकार से भोग करते रहे। 100 साल की उम्र निकल गई, और राजा के अंदर इतनी काम भावना थी कि राजा ने 1100 पुत्रों को पैदा किया, 110 पुत्रियों को पैदा किया, 1100 पुत्र और 110 पुत्रियों का उन्होंने पैदा किया। उनकी वाइफ का नाम पुरंजनी था। इस तरह से यादव राजा का जवान ही निकल गया। और फिर पुरंजन ने अपने सारे पुत्रों की शादी भी कराई और धीरे धीरे पांचाल की जो सिटी थी पूरी की पूरी उसके पुत्रों और पौत्रों से भर गई। तो इसमें सिटी जो थी वो हमारे शरीर को डिनोट करती थी, और उनके पुत्र और पौत्र का मतलब होता है व्यक्ति के पुण्य के कार्य और पाप के कार्य। जैसे 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 व्यक्ति कर्म करता जाता है उसका उसका पुण्य और पाप का अकाउंट बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे राजा का युद्ध का अवस्था खत्म हुआ तब तक उनके इतने सन और ग्रैंड सन पुत्र और पौत्र हो गए कि पूरा पांचाल सिटी उससे भर गया पुत्र और पौत्रों से। और फिर नारद मुनि बताते हैं कि जैसे आप अटैच हैं उसी तरीके से राजा पुरंजन इतनी सारी भौतिक इच्छाओं में अटैच हो गए। उन्होंने बहुत सारी देवताओं की पूजा की परंतु भगवान के बारे में कभी भी ध्यान नहीं दिया। और फाइनली राजा पुरंजन ऐसे स्टेज पे आए जब वृद्धावस्था आ जाती है, व्यक्ति की मृत्यु का समय आ जाता है। तो जब मृत्यु का समय आया तो उनकी इस सिटी में एक गंधर्व राजा था, उसने उस पर अटैक किया। गंधर्व राजा का नाम था चंडवेग। चंडवेग का मतलब ऐसा समय जो बहुत तेजी से जाता है। इस चंडवेग में 360 चंडवेग के पास 360 सोल्जर थे, 360 सैनिक थे। 360 सैनिक क्या है, जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं उसी तरह से उस राजा के 365 सैनिक थे। और जब ये चंडवेग उसके फॉलोअर्स ने पुरंजन की सिटी को अटैक करना चालू किया, चंडवेग जो है वो समय को प्रतीक है, जब पुरंजन की सिटी पर अटैक किया तो जो एक सांप था जो जो पांच जिसके पांच मुख थे जो रानी की रक्षा करता था, वो सांप ने डिफेंड करने का प्रयास किया। उस सर्पेंट ने बहुत 720 गंधर्वों से लड़ाई की, जैसे 320 दिन और 320 रात, ऐसे 720 सैनिक थे उस चंडवेग के। तो इस सांप ने उनसे लड़ाई करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वो सांस कमजोर होने लगी। और जब राजा ने देखा कि उसके मित्र उसके नागरिक सब कमजोर हो रहे हैं तो राजा बहुत दुखी हो गया। और उसी समय ये जो समय शक्ति की पुत्री का नाम होता है जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, जरा जो है वो टाइम की पुत्री है। तो उसी समय जरा या काल कन्या उसी को बोलते हैं, जरा या काल कन्या उसी समय अपने एक पति को ढूंढ रही थी। और काल कन्या नारद मुनि से मिली और नारद मुनि से मिलके बोलती है कि नारद मुनि आप तो ब्रह्मचारी हैं और मैं आपके प्रति काम भावना से बहुत पीड़ित हूं, मुझे स्वीकार करिए। परंतु नारद मुनि ने बोला नहीं, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा, जरा ने मुझे कर्ज कर दिया। जरा ने नारद मुनि को कर्ज किया कि मैं कभी एक स्थान पर नहीं रह पाऊंगा। नारद मुनि को दो जगह से सेम कर्ज सेम श्राप मिला था, दक्ष ने भी यही श्राप दिया था और जरा ने भी यही श्राप दिया। जब वृद्धावस्था नारद मुनि के पास आई, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्ध जब हो जाते हैं तो उसको जरा बोला जाता है। तो ये जरा काल कन्या के रूप में नारद मुनि के पास आई और आके बोलती है कि मैं आपको स्वीकार करना चाहती हूँ। नारद मुनि ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए नारद मुनि कभी वृद्ध नहीं होते, क्योंकि उनका आध्यात्मिक शरीर है, वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते, हमेशा जवान रहते हैं। तो जब जरा को उन्होंने रिजेक्ट किया तो जरा ने फिर बोला कि मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक स्थान पर ज्यादा समय नहीं रह पाएंगे। और फिर नारद मुनि ने सजेशन दिया कि आप जाइए यवन राजा के पास जाइए और यवन राजा आपको वो देगा। यवन राजा का नाम था भय। तो जब इस प्रकार से जरा और भय का मिलन हुआ और फिर राजा एक तरफ से चंडवेग भी अटैक कर रहा था सिटी के ऊपर, चंडवेग मतलब टाइम फैक्टर अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ से भय और जरा ये इसने भी अटैक करना चालू किया। और फिर दोनों ने दोनों टाइप से सिटी को अटैक किया। और राजा का ये जो यवन राजा था भय, उसके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था प्रज्वल। प्रज्वला मतलब इतनी बड़ी बीमारी, इतनी इतनी खतरनाक बीमारी जिसमें व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर 107 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो वो जो है वो यवन राजा के बड़े भाई है। तो अभी टाइम ने अटैक किया चंडवेग के रूप में, यवन राजा ने अटैक किया भय के रूप में। जब व्यक्ति के ऊपर समय कम बचता है तो भय होने लगता है और बुढ़ापा भी आ जाता है। और उसके साथ साथ प्रज्वल ने अटैक किया, इतना ज्यादा फीवर हुआ पुरंजन को, पुरंजन की जो सिटी थी उस पर अटैक हुआ। दैट मीन्स मनुष्य को, मनुष्य के शरीर पे अटैक होता है। और यवन किंग ने फिर जरा को उस पोरंजन के पास भेज दिया, उस सिटी में सभी लोगों के पास भेज दिया। तो इस प्रकार से यवन राजा जरा और चंड व्यक्ति इन्होंने मिलकर पोरंजन की सिटी को पूरी तरह से खत्म कर हो गया। और जब जरा ने पोरंजन के पास आई तो पोरंजन की सारी सुंदरता चली गई और वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, उनकी बुद्धि भी चली गई, उनका ऐश्वर्य भी चला गया, दैट मीन्स उनकी पत्नी भी उनसे दूर चली गई। और उसके बाद गंधर्व और यवन ने उनको आसानी से जीत लिया। और ये पुरंजन देख रहे थे कि उनकी सिटी खत्म होते जा रही है, पुरंजन ने ये भी देखा कि उनकी पत्नी बच्चे पोते सब के सब जा रहे हैं उनको छोड़ के, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसकी इंद्रियां भी उसको छोड़ के चली जाती हैं, इंद्रियां भी कुछ काम नहीं करती, बुद्धि भी काम नहीं करती है, और शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ जाते हैं। और तो इसी तरह से जब पुरंजन वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी बच्चे सब उनको छोड़ के चले जा रहे हैं, और इससे पुरंजन बहुत दुखी हुए, बहुत भयभीत भी हुए। और फाइनली पुरंजन को यद्यपि वो सिटी छोड़ने की इच्छा नहीं थी, परंतु उनको जबरदस्ती उस सिटी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस सिटी को काल कन्या ने खत्म कर दिया था, वृद्धावस्था ने खत्म कर दिया था। और पुरंजन ने रोते रोते अपनी पत्नी के बारे में सोचते सोचते उस अपने शरीर को, मतलब उस सिटी को छोड़ा, मतलब अपने शरीर को छोड़ा। और शरीर को छोड़ने के बाद प्रज्वर ने उस शरीर में आग लगा दी, 160 डिग्री बुखार का मतलब है, शरीर में आग लगा दी और शरीर खत्म हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब सिटी के पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो जो सांप था जो कि सिटी की रक्षा करता था, जब उसने देखा, ये सांप लाइफ एयर को डिनोट करता है, 5 प्रकार की जो वायु है उसको डिनोट करता है, तो जब उसने देखा कि पूरी सिटी जल गई है तो वो सांप भी उस सिटी को छोड़ के चला गया। दैट मीन्स जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो 5 प्रकार की हवा जो है वो भी शरीर छोड़ देती है। और चूंकि राजा पोरंजन अपनी फैमिली से बहुत अटैच थे तो उनसे छूटते समय भी बहुत बहुत दुखी थे, और चिंता में सोच रहे थे कि मेरी पत्नी के कितने सारे बच्चे हैं, मैं ये शरीर छोड़ दूंगा तो उसकी कौन देखभाल करेगा, ऐसा सोचते सोचते पोरंजन राजा की मृत्यु हो गई। और यवन के जो सोल्जर थे, यवन के जो सैनिक थे, वो पोरंजन को घसीट के ले जा रहे हैं एक पशु के समान। और पोरंजन की ऐसी हालत देख के सभी लोग बहुत दुखी हुए। और जैसे ही राजा और उनके लोग सिटी के बाहर गए, वो सिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। और यवन किंग उनको जब लेके जा रहे हैं तब भी पुरंजन अपने पुराने लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा क्या होगा। उस समय जो परमात्मा है, पुरंजन की जो हेल्पलेस कंडीशन थी, पुरंजन ने इतने सारे पाप के काम किए थे, वो सारी चीजों को परमात्मा देखते हैं, वो पुरंजन को दंड मिलना चालू होता है। और चूंकि पुरंजन ने अपना शरीर अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए छोड़ा था, तो अगला जन्म पुरंजन का होता है पुरंजनी के रूप में, विदर्भ के राजा की पुत्री के रूप में उनका जन्म होता है। और जब वो पुत्री बड़ी होती है तो वो वैदर्भ भी राजा मलय ध्वज की पत्नी, पांडु देश में राजा मलय ध्वज जो थे उनकी पत्नी के रूप में उनका विवाह होता है। और ये राजा मलय जो थे ये बहुत महान भक्त थे, जिनके नाम से मलय चंदन और मलय का पर्वत है, उनके नाम से इस राजा का है। तो उनकी पत्नी के रूप में इनका जन्म हुआ, और ये राजा बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए राजा मलय ध्वज ने जब वैदर्भी से विवाह किया तो उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्री का मीनिंग था कि उस पुत्री की आंखें हमेशा भगवान कृष्ण के ऊपर डिवोटेड थी, दैट मीन्स अगर कभी हम आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं, शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसी चेतना का विकास होता है जो कि भगवान भगवान से भगवत भावना भावित है। उसके अलावा 7 पुत्रों को भी जन्म दिया, 7 पुत्र मतलब भक्ति के 7 क्रियाएं। और ये 7 पुत्र द्रविड़ देश के राजा बने, इसलिए द्रविड़ देश में भक्ति की ज्यादा पराकाष्ठा होती है। प्रभुपाद जी भी बताते थे कि साउथ इंडिया में भक्ति ज्यादा इंटैक्ट है, साउथ इंडिया में वैदिक कल्चर अभी भी नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साउथ इंडिया के 7 राजा जो हैं वो मलय ध्वज के 7 पुत्र हैं। और अगस्त्य मुनि, मलय ध्वज की पुत्री से अगस्त्य मुनि का विवाह होता है। मलय ध्वज की पुत्री खुद भक्ति को प्रदर्शित करती है, और उनके पुत्र दृढ़च्युत का मतलब होता है, उसका पूरा डायनेस्टी अलग से बताया है नारद मुनि ने, दृढ़च्युत से एक पुत्र का जन्म होता है इद्मवाह। इद्मवाह का मतलब जो कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है। तो उनका जो जनरेशन है मलय ध्वज के जनरेशन, उसमें सभी शुद्ध भक्त हैं, और सभी के वो गुण पाए जाते हैं जिससे आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया जाए। और कुछ समय बाद राजा मलयध्वज अपने किंगडम को डिवाइड करते हैं और अपनी पत्नी के साथ निर्जन भजन करने के लिए चले जाते हैं। रानी वैदर्भी भी अपने पति को फॉलो करते करते चली जाती है जंगल में। तो रानी वैदर्भी को यहाँ शिष्य जैसा समझा गया है और मलयध्वज राजा को गुरु जैसा समझा गया है। जिस प्रकार से शिष्य को गुरु के साथ जाना चाहिए उसी प्रकार से रानी वैदर्भी भी मलयध्वज के साथ चली जाती है। और इस प्रकार से राजा मलयध्वज अलग अलग नदियों में स्नान करते हैं और मलयध्वज पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तपस्या करने के कारण वो बहुत उनका शरीर भी बहुत पतला हो जाता है और मलयध्वज अपनी लाइफ एयर को कंट्रोल करके अपने मन को भगवान में फिक्स करते हैं। और 36,000 साल तक तपस्या करने के बाद राजा मलयध्वज भक्ति की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने शरीर को त्याग कर देते हैं शरीर। और रानी वैदर्भी भी जो थी वो ऑलरेडी मलयध्वज की सेवा कर रही थी अपने सारे कंफर्ट को छोड़ के। तो मलयध्वज का जब शरीर खत्म हो जाता है और रानी रानी उनकी सेवा करते रहते हैं, पर सेवा करते करते रानी को पता रानी को फील होता है कि राजा के पैर जो हैं वो अभी एक्चुअली इतने गर्म नहीं है, ठंडे होने लगे हैं। तो उससे रानी को समझ में आता है कि राजा ने शायद अपना शरीर त्याग कर दिया है। तो रानी रोने लगती हैं और जब ये रोती रहती हैं उस समय वहां पे एक ब्राह्मण आता है और वो ब्राह्मण रानी को आके समझाता है कि मैं तो आपका बहुत पुराना मित्र हूँ, आप ही मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। और नारद मुनि बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण जो है वो परमात्मा कहला परमात्मा होता है। वो ब्राह्मण रानी को गाइडेंस देता है, पुरंजन मतलब पुरंजनी, पुरंजन जो दूसरे जन्म में वैदर्भी के रूप में है, उनको ये ब्राह्मण गाइडेंस देते हैं, परमात्मा गाइडेंस देते हैं कि एक्चुअली मैं तो हमेशा से आपका मित्र था, आपने कभी मुझे पहचाना ही नहीं। आपके पति, आपका पिछला जन्म, ये सब जो वस्तुएं हैं आप उन सबसे अटैच हैं, परंतु मैं हमेशा आपका मित्र था, हम और आप एक साथ वैकुंठ में रहते थे, परंतु आपने मुझे त्याग करके आप यहाँ पे आ गए, पर मैं आपको अभी तक नहीं भूला। इस प्रकार से वो ब्राह्मण बताते हैं, दैट मीन्स परमात्मा आके गाइड करते हैं गुरु के रूप में, और इस प्रकार से परमात्मा उसको एनलाइवन करते हैं। फाइनली अपने जो मृत मरे हुए पति की शोक मनाने के बाद वेदर भी पति के शरीर को एक दाह संस्कार की स्थिति के ऊपर रखते हैं और वेदर भी स्वयं अपने पति के साथ उसके अंदर चली जाती हैं। दैट मीन्स एक भक्त का जीवन इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे आध्यात्मिक गुरु अगर संसार से जा रहे हैं तो भक्त को ये श्योर करना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को मैं जीवन भर पालन करूंगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु के निर्देशों को पालन नहीं कर सकता है, करने की इच्छा नहीं है, मतलब अगर एक चीज होता है कि हम करना चाहते हैं परंतु अनर्थ के कारण नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग बात है, परंतु अगर कोई शिष्य करना नहीं चाहता है गुरु के निर्देशों का पालन, दैट मीन्स उसका जीवन मरे के समान है, उसको मर जाना चाहिए, जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस प्रकार से ब्राह्मण उनको क्या क्या बताता है। ब्राह्मण एक्चुअली पूछता है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे जल रहे हैं, ये जो डले हुए हैं, ये कौन है और आप किसकी वाइफ या डॉटर है। और फिर ब्राह्मण यही बताता है कि आप सबको पहचानते, मुझे नहीं पहचानते, मैं तो आपका एटर्नल फ्रेंड हूँ, हम दोनों एक साथ रहते थे परंतु आप मुझे छोड़ के इस भौतिक संसार में आ गए। और इस फिर ब्राह्मण पूरा समझाता है और इस प्रकार से ब्राह्मण की बातों से वैदर्भी को ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वैदर्भी भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि इस स्टोरी को एंड करते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि ये पुरंजन की स्टोरी मैंने आपको सुनाई जिससे कि आपको भक्ति की प्राप्ति हो, और क्योंकि ये भगवान की भक्ति के बारे में बता रही है इस स्टोरी में, और ये स्टोरी में आपको संसार के सारे तथ्य जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे, और अगर आप स्टोरी को समझ सकते हैं तो आप अपने जीवन को सफल बना लेंगे। परंतु तो राजा प्राचीन वर्य सब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, मैं तो समझ ही नहीं पाया आपने जो बोला है उसका क्या मीनिंग है, स्टोरी क्या है, इसको कैसे समझूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा, वो तो दूर की बात है, ये इतनी कठिन फिलोसफी आपने बोल दी कि मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। तो राजा राजा प्राचीन वर्य सब को समझाने के लिए फिर नारद मुनि पूरी स्टोरी को एनालिटिकल बताते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि राजा क्या था और किस प्रकार से था। और जब पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो फिर राजा को समझ में आता है, उसके बाद राजा वैराग्य को प्राप्त करता है। तो वो स्टोरी हम फिर से डिस्कस करेंगे, पूरा स्टोरी। इस बार जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ये सब्जेक्ट मैटर लेंगे कि कौन सी चीज किसको डिनोट करती है और क्यों ऐसा लिखा गया है। हो सकता है थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, परंतु मैं नोट्स के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा तो उससे आपको बात के लिए बहुत फायदा होगा। नारद मुनि भी इस स्टोरी को 2 बार बता रहे हैं, तब प्राचीन वही सबको समझ में आया है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे जब हम मिलेंगे तो हम इसी स्टोरी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे हम क्या क्या सीख सकते हैं उससे, वो हम डिस्कस करेंगे।
हरे कृष्णा
प्रभु, यस प्रभु।
जी, आपने बताया कि दो तरह के मार्ग, एक भक्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग है। तो
हाँ
जो सांसारिक जो व्यक्ति है नॉर्मली, वो सभी लोग मतलब प्रवृत्ति मार्ग में ही है। इसका मतलब जैसे जो विवाह करते हैं वगैरह।
जो विवाह करते हैं और भोग के लिए जीवन जीते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में कहलाते हैं, जिनका जीवन भोग पे आधारित होता है। एक्चुअली विवाह उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसका क्राइटेरिया है कि हमारा जीवन भोग के लिए है कि अध्यात्म के लिए है। क्योंकि विवाह तो गृहस्थ भी करते हैं, परंतु उनके जीवन का उद्देश्य भोग करना नहीं होता है, भगवत चेतना को प्राप्त करना होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो इस संसार में फंसे रहना चाहते हैं उनको प्रवृत्ति मार्ग में बोला जाता है, और निवृत्ति मार्ग मतलब जो संसार से जाना चाहते हैं, मतलब संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं।
मतलब प्रभु जी, जो आत्माएं थोड़ी सी उच्च स्तर की होती हैं तो वो मतलब निवृत्ति मार्ग में आती हैं, और जो शायद उस स्तर से नीचे की होती हैं वो शायद ऐसा
वो
होता है।
प्रवृत्ति मार्ग में आती हैं। हाँ, जिस आत्मा का जिस प्रकार से प्रारब्ध होता है उसके आधार पे आती हैं।
अच्छा, प्रभु जी अपनी कल चर्चा हुई थी ना, वो पिछली बार की, वो कल सदाशिव के बारे में जरा बताइए प्रभु जी। मैंने इसका मुझे कुछ मालूम नहीं है, सदाशिव कौन है?
सदाशिव जो है, जैसे ब्रह्म संहिता में जो श्लोक आता है, क्षीरम यथा दधि विकार, आपने भी सुना होगा, दूध और दही का जो डिफरेंस है।
जी
विष्णु जी जब भौतिक संसार के ऊपर देखते हैं तो भौतिक संसार में एजिटेशन आता है, तो भगवान विष्णु की जो दृष्टि है वो टेक्निकली सदाशिव को डिनोट करती है। भगवान शिव की दृष्टि को सदाशिव बोला जाता है। जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करते समय वो डायरेक्ट हाथ से टच नहीं करता, हाथ में ग्लव्स लगाता है और ग्लव्स लगा के ऑपरेशन करता है। तो
जी
देखा जाए तो हाँ, डॉक्टर डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करता, ग्लव्स के द्वारा करता है। तो वो ग्लव्स जो है वो सदाशिव बोले जा सकते हैं, और डॉक्टर जो है वो भगवान भगवान विष्णु बोले जा सकते हैं। तो उसमें अंतर नहीं है भगवान विष्णु और सदाशिव में, केवल जब भगवान विष्णु भौतिक संसार में मैनेजमेंट करते हैं तो सदाशिव के रूप में करते हैं, अपने स्वयं के रूप में नहीं करते हैं। तो वो ओरिजिनल सदाशिव है, जो कि भगवान विष्णु के जस्ट इनकार्नेशन है और जो आध्यात्मिक संसार के गेट पे रहते हैं। आपने देखा होगा लोकपाल के रूप में हमेशा सदाशिव रहते हैं, वृंदावन में भी सदाशिव वृंदावन के गेट पे रहते हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं। तो वो सभी सदाशिव का रूप है, गोपेश्वर महादेव जो कि धाम के चारों तरफ निवास करते हैं, वैकुंठ की रक्षा भी करते हैं सदाशिव। तो वो भगवान विष्णु का डायरेक्ट इनकार्नेशन है, और फिर वो इनकार्नेशन जो है सदाशिव, उसमें से फिर रुद्र के अवतार अलग अलग ब्रह्मांडों में आते हैं।
तो प्रभु जी, जैसे ये अपना जैसे ब्रह्मांड है, इसमें ब्रह्मा जी की स्थिति और जो शंकर जी की स्थिति, इनमें ऊंचा कौन है या स्थिति किसकी ऊंची है?
आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए शंकर जी की स्थिति ऊंची है।
तो हर ब्रह्मांड में एक शंकर जी एक ब्रह्मा जी होते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना?
शंकर जी बहुत सारे हो सकते हैं, रुद्र, मैंने आपको बताया था ना कि अश्वत्थामा जो है वो भी रुद्र का अंश है। तो
जैसे
रुद्र 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। अभी ब्रह्मा जी के इस दिन में 11 प्रकार के रुद्र हैं इस मनु में। आप भागवत पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा रुद्र, 11 रुद्र पाए जाते हैं, 11 रुद्राणियों का नाम भी दिया गया है।
हाँ, प्रभु जी ऐसा बताया ना कि ब्रह्मा जी जो होते हैं ना, 100 वर्ण व्यवस्था जन्म उनके हो जाते हैं, वर्ण के हिसाब से चलते हैं तो ब्रह्मा जी बन सकते हैं। तो ये
हाँ
पोस्ट होगी ब्रह्मा जी की, ऐसी
हाँ
शंकर जी की पोस्ट होती है क्या?
नहीं, शंकर जी जो सदाशिव है वो तो कोई पोस्ट नहीं है। रुद्र के केस में कई बार होता है कि किसी जीव को भी रुद्र का पोस्ट दिया जा सकता है। तो रुद्र जो है वो एग्जैक्टली शंकर नहीं है, सारे रुद्र शंकर नहीं कहलाते हैं, कभी कभी कुछ जीव को भी कोई कुछ स्पेसिफिक सेवा के लिए रुद्र पोस्ट दी जाती है, परंतु जो शिव या सदाशिव कहलाते हैं वो जो है वो पोस्ट नहीं है, वो भगवान का अवतार है डायरेक्ट।
अच्छा, मतलब ब्रह्मा जी तो एक जीवात्मा ही होते हैं देखा जाए तो।
ब्रह्मा जी तो
ब्रह्म
जीवात्मा होते हैं। हाँ
शंकर जी मतलब जीवात्मा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
रुद्र जीवात्मा हो सकते हैं, शंकर जो मेन होते हैं, जो कि जैसे आप देखें, मैं बताता हूँ आपको, सदाशिव जो है वो तो वैकुंठ के गेट पे है, वैकुंठ के उसके बीच में, और जो शंकर हैं जो कि कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं, वो हर ब्रह्मांड में आते हैं और फिर उस शंकर से रुद्र के बहुत सारे अवतार निकलते हैं। तो रुद्र अवतार जो है वो जीव हो सकते हैं, शंकर नॉर्मली जीव नहीं होते हैं, शंकर जो है वो सदाशिव के एक्सपेंशन होते हैं। अभी
ओके,
समझ में आया आपको?
अभी समझ में आया प्रभु जी। यानी जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं तो सबसे बड़े विष्णु जी हैं,
हाँ,
फिर
महेश
विष्णु
हैं,
शंकर जी हैं, उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी का
उसके
स्थान
बाद
रजो
में ब्रह्मा जी। हाँ
तमो और सतो के प्रतिनिधित्व करते हैं।
हाँ
हाँ ठीक है
ओके।
प्रभु जी, ये काफी टिपिकल स्टोरी बताई आपने आज। आज की और कठिन स्टोरी थी आज की, मतलब
आज की और
अगली
कठिन
बार
स्टोरी थी, मैं अगली बार कुछ नोट्स बना के उसको डिस्प्ले करके बताऊंगा तो हो सकता है ज्यादा समझ में आए। ओके,
भी निकालूंगा, आप भेजेंगे तो फिर मैं समझूंगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ
ये स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल स्टोरी है भागवतम के अंदर।
यस प्रभु जी, लेकिन समझाने के लिए बहुत ही अच्छी है, मतलब समझने के लिए हमारा शरीर है कैसे समझेंगे हम।
हाँ, अगर हम अच्छे से समझ सकें तो कई लोगों को समझाया जा सकता है, बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, लोगों को कन्विंस भी किया जा सकता है। श्री
हाँ यस हरे कृष्ण
कृष्ण। तो नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं जगत गुरु श्री
प्रभु
प्रभुपाद
जी।
जी के
हरे
साथ।
कृष्णा, एक
यस
क्वेश्चन
प्रभु,
था प्रभु जी
यस प्रभु।
के, प्रभु जी आपने समझाया था कि शास्त्र में ऐसा कोई आलेखन दिया गया है जिसे कोई टिपिकल से कठिन वो जो शब्द हो हमारे, या जो सीखना हो आसान से सीख सकते।
शास्त्र में क्या दिया गया है उसके लिए प्रभु?
मतलब कि हमें कुछ लाइफ में डिफिकल्टी आती है सीखने के लिए, मतलब कि कोई भी हो, सम्स हो, मैक्स हो, या कोई शब्द हो, तो शास्त्र में ऐसा कुछ देखा गया है जिससे हमें उस चीज को निवारण हो सकता है, मतलब।
शास्त्र में एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक में लिखा है कि आप चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करिए तो कठिन चीज भी आसान हो जाती है, और अगर चैतन्य महाप्रभु को भूल जाते हैं तो आसान चीज भी कठिन हो जाती है। आप श्लोक नंबर लिख सकते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 14वें अध्याय का पहला श्लोक, 14.1,
प्रभु जी आपके
कथंचन
पास पीडीएफ पड़ा होगा प्रभु जी आपके पास?
पीडीएफ होगा, 1 मिनट रुकिए, मैं इसमें ही दिखा देता हूँ,
हाँ प्रभु,
जस्ट अभी दिखा देता हूँ, उससे बाकी लोगों को भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा श्लोक है वो। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जस्ट
हाँ
स्क्रीन
हाँ
शेयर
प्रभु,
करता हूँ। चैतन्य चरितामृत में आता है वो आदि लीला में 14वें अध्याय में पहला श्लोक। दिखाई दे रहा
हाँ प्रभु, दिखाई।
ये श्लोक आता है, कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम। इसका मीनिंग है, थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू डू बिकम्स इजी टू एग्जीक्यूट इफ वन समहाउ और अदर सिंपली रिमेंबर्स लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, बट इफ वन डज नॉट रिमेंबर हिम इवन इजी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। टू दिस लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस। चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करने से बहुत कठिन चीजें भी आसान हो जाती हैं, और अगर उनको भूल जाए तो आसान चीजें भी बहुत कठिन हो जाती हैं। इसलिए आपको कभी कठिनाई हो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करिए और उस कार्य को करना प्रारंभ करिए, आसान हो जाएगा।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ
ओके, ये श्लोक याद रखिएगा, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 14वें अध्याय का पहला श्लोक।
प्रभु, आप
ओके,
इसको एक बार लाइन में गा के सुनाइए ना, कि आप अलग अलग राग होता है प्रभु जी उसका, तो
हाँ, ये सिंपल संस्कृत का मीटर है इसका, जो
अच्छा उसका
अनु
कोई राग नहीं है प्रभु जी, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र अपने कोई राग से गाते हैं, तो ऐसा इसका राग नहीं है प्रभु?
नहीं, मैं मीटर से गा रहा हूँ। कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम। ये श्लोक जैसा गाया जाता है, कीर्तन जैसा नहीं कर सकते, श्लोक जैसा गाया जाता है। ओके,
ओके बहुत
आप
थैंक यू सर।
आइएगा, मैं याद करा दूंगा बैठ के, एक बार आधे घंटे में
श्योर
याद हो
सर,
जाएगा आपको।
श्योर सर,
ओके,
हाँ
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दाई गौर परमानंदे हरि हरि बोल।